है ब्लैंक में, तो वो ज्यादा बड़ा था। पर थोड़ा सा मैं दोहरा करता हूँ, पिछली दफा मैंने आपकी खिदमत में एक बात दर्ज की थी और वो बहुत अहम बात है जिसका इरादा करना दोहराना जरूरी महसूस होता है, वो ये कि इंसान के लिए हिदायत हासिल करने का इस दुनिया में, इस जिंदगी में एक वक्त है कि उस मुकर्रर वक्त के अंदर इंसान अगर हिदायत के राह पर आ जाए, सही चीज़ को पहचान ले, तो वो चीज़ उसके लिए फायदेमंद होती है। वरना जितना ज़्यादा इंसान डिले करता जाता है, जितना ज़्यादा इंसान देर करता जाता है, उतना उसका फायदा कम होता जाता है। ये एक बहुत अहम बात है और इसी वजह से जो चीज़ कही गई सबसे ज़्यादा बाफजीलत इस बात को करार दिया गया कि इंसान नौजवानी के दौर से ही मुतवज्जो हो जाए हक की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, खुदा की तरफ। तो उस वक्त से अगर इंसान का सफ़र शुरू हो जाए तो फिर इम्कान है कि ज़िंदगी के जब अगले मराहल आते हैं तो उनके आने आने तक इंसान काफ़ी मनाजिर को तय कर चुका हो। देखिए एक चीज़ जो उलमा बयान करते हैं, मैं नहीं बयान कर रहा, और मैंने इसलिए बात कही कि ये एक पॉपुलर बिलीफ से थोड़ा सा हट कर होता है, वो ये कि आइमा और अंबिया इतना आगे क्यों निकल जाते हैं बाकी इंसानों से, क्या वजह होती है? उसकी वजह को ये बयान फरमाते हैं कि उनका इर्तिका शिका में मादर से शुरू हो जाता है। इसलिए कि जब आपको रिवायतें सुनते हैं कि पैगंबर अकरम या मेरे मोमिन अलैहि सलाम के लिए कि जब वो अपने उस मरहले में थे उस वक्त उनकी वालिदा खुद तिलावत की आवाज़ सुनती थी कि जो माँ मौजूद है वो कोई तिलावत कर रहा है। और इसी चीज़ को इमाम सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया भी है कि जब आपसे पूछा गया कि इंसानों की जहानत और समझ के लिए फर्क क्यों है कि बाज अफराद हैं वो इशारों से बात समझते हैं, बाज अफराद पूरा समझाने से समझ जाते हैं और बाज जो हैं वो बार बार समझाने से नहीं समझते, तो हमने यही फरमाया है कि वो अफराद के जो इशारों से बात समझ जाते हैं उनकी समझ या जहानत या सोच की जो इब्तदा है शऊर की वो शिकम मादर से है। इस हवाले से बहसियत वालदैन जाहिर है कि अगर हम अपने अंदर ऐसी कोई बात महसूस करें तो सबसे पहला शुक्रिया वालदैन का अदा करना चाहिए, क्योंकि उस मरहले में हम आपको कुछ करने के काबिल होते नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वालदैन की वजह से, वालदैन का कोई वालदैन की एक मेहरबानी सही। तो ये एक बहुत अहम होता है कि इंसान के लिए वक्त की जो अहमियत है इस जिंदगी के दौरान में, कि जो हर इंसान 50 साठ 70 साल के दौरान में उसको पता होता है, जिसको कुरान ने कहा अजल मुसम्मा, एक नाम दी गई मुद्दत। और ये मैंने आपको खिदमत में अर्ज़ भी किया था कि कुरान करीम में इंसान की इस दुनिया में जिंदगी के हवाले से तीन लफ्ज़ हैं कि एक अजल, एक तवफ़ा, एक मौत। अभी उसका मौका नहीं है लेकिन जो शामिल रहे उनको याद रखेगा। तो अजल मुसम्मा एक मुद्दत है, उस मुद्दत में जितना जल्द इंसान मुतवज्जो है उतना ही उसके लिए फायदेमंद है, और जितना जल्द इंसान मुतवज्जो होने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर जो कुछ उसकी समझ में आ रहा है तो उसके लिए करामत है। पिछली दफा मैं आपको एक कुरान करीम कही आयतों के हवाले से सुनाना चाह रहा था, सूरह वाशिया, सूरह वाशिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल अताका हदीस व वाशिया, क्या तुझ तक बात पहुंची उसकी के जो ढांप लेने वाली है, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नाफ़िलतुन, उस दिन के जब चेहरों को ढांप लेने वाली आ जाए, उस दिन क्या होगा कि कुछ चेहरे वजूह हों, कुछ चेहरे उस यौम में उस मरहले में ऐसे होंगे खाशिअतुन, जो खुशू करने वाले होंगे, जिन पर फशीलत के आसारदारी होंगे, आमिलतुन अमल करने वाले होंगे, नाफ़िलतुन मेहनत करने वाले होंगे। ये तीनों के तीनों सिफात अच्छी हैं बुरी हैं? अच्छी। इंसान को साहिब फशीलत होना चाहिए, इंसान को आमिल होना चाहिए, इंसान को खुदा की राह में मशक्कत उठाने वाला होना चाहिए, लेकिन इसका नतीजा तफला नारन आदमिया, इन्हें मिला दिया जाएगा भड़कती हुई आग से। और ऐसे चश्मे से कि जिसका खौलता हुआ पानी होगा उनको पेश किया जाएगा। और उनके लिए खाना नहीं होगा मगर कोई जहन्नम का जो बवाल जो पीप और सचिन। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा क्यों है? वो हाशे भी हैं, आमिल भी हैं, नासिर भी हैं। कुरान करीम में कहा जब तुम फारिग हो जाओ तो अपने को नस्क करो। कोई जुमला नहीं, नस्क में मेहनत करो, मशक्कत करो, कभी अपने आप को फारिग ना हो। वो इला रब्बे का फरगब, और अपने रब की तरफ राग हो जाओ। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि उस यौम में कि जो यौम हिसाब है, जो यौम जजा है, उस दिन खाशे होने का, आमिल होने का और मशक्कत करने का कोई फायदा नहीं। उसका नतीजा क्या है? भड़कती हुई आग से मिल जाना। सूरह वाकया आपको यकीन पढ़ते होंगे। सूरह वाकया में अफाक और शमाल जो बाएं हाथ वाले 25 सफर बयान की गई। वकाउ मिन कब्ल ज़ालिका मुतरफीन, इससे पहले यानी अपनी हयात दुनियावी में एक ना मुतरफ थे। मुतरफ का तर्जमा अगर किया जाए तो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लफ्ज है इसके लिए, जिसे हम कहते हैं स्पेंट थ्रिफ्ट, यानी ऐसा शख्स जो खुदा की नेमतों को बिल्कुल उड़ाता है, जाया करता है बगैर किसी शर्म हया के, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी एहसास के। मुतरफ थी यो जिंदगी में बटाम, और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार किया करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चीज है कि इंसान का गुनाह में मुबतला हो जाना या गुनाह कर बैठना इतनी बुरी बात नहीं है। अगर गुनाह के आपस में निदामत आ रही है, गुनाह के बाद तौबा है, जिस चीज को खुदा ने कहा कि ये जहन्नम में ले जाने वाली हतमा, वो गुनाहों पर इसरार है। गुनाहों को मुसलसल और दायमी करना, गुनाहों की आदत बना लेना, ये वो चीज है जो इंसान का जहन्नम में ले जाएगी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती में फौरन बात इसीलिए परवरदिगार ने तौबा और इस्तिगफार का दर खुला रखा है कि जब भी इंसान से गलती हो, गुनाह हो, तो कहे कि रब्बाना ज़ालमना अन्फुसना फ़इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिन अल-ख़ासिरीन, या इस किस्म की और बात। तो उस दिन खाशे होना, अमल करने वाला बनना और मेहनत और मशक्कत करना सब कसर जाए, नतीजा सिर्फ आग और तबाही। वजूह हुई यौमा-इज़्ज़ नाइमतुन, और कुछ चेहरे उस दिन सर उस चेहरे उस दिन शादाब और खुशहाल नजर आ रहे होंगे। लिसाहा राज़ियतुन, उन कोशिशों से, उन सभी से जो वो पहले करके आ चुके हैं उससे राजी होंगे। तो वहां पर खुश होने के लिए क्या जरूरी है कि इस दुनिया में सारी की जाए, इस जिंदगी में अमल किया जाए, इस जिंदगी में मेहनत की जाए, वो सारा साजो सामान यहाँ पर आ गया। ये एक नुकता था कि जिसको मैं चाह रहा था कि मैं दोहरा रहा बहुत अहम है, इसलिए कि इसकी अहमियत इस वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो शैतान हमारा खुदा का दुश्मन जिसे कुरान ने कहा उसके वसवसों में से सबसे अहम वसवसा क्या है? कल का वादा करा कि आज तौबा नहीं करेंगे, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, कल कर लेंगे। आज जरूरत नहीं कि हम कोशिश करेंगे अपनी नमाजों को बेहतर करें, आज जरूरत नहीं कि हम कुरान में गौर करके आज से ही शुरू कर दें, अभी तो अपनी उम्र पड़ी है, कर लें जब फुर्सत होगी, अभी तो जिंदगी में बहुत मसरूफियात हैं। ये सब वसवसे से शैतान, और खुदा ना हंसता अगर ये डेरे, अगर ये देर इंसान के कर्म की स्याही में इजाफे का बायस बन गया तो फिर क्या होता है कि तौफीकात आमाले का सर हो जाती है, फिर इंसान कभी भी इस किस्म के काम करने के काबिल नहीं रहता। तो ये एक चीज है कि जिसको मुनासिब महसूस हुआ कि मैं इसको दोहराऊं, क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है कि जब भी आपको किसी नए अमल की तौफीक मिले, जब भी आपके अंदर ये जज्बा और तहरीक पैदा हो कि मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, फौरन कर देना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं कीजिए कि कल या परसों या वाकई, क्योंकि शैतान जहां मुतरद्दिद देखता है हमारे खैर में हमारे साले में वही वसवसा डाल के आपको गड़बड़ कर देता है। और इस चीज के रिवायतों में हदीसों में जो खास तौर से ताकीद की गई है इसी बात की कि जब ये ख्याल आए फौरन करो वो सदका और इंफाक का दायरा खुला के आया। फिर अल्लाह की राह में सदका या इंफाक शैतान की तवज्जो तोड़ देता है। वो कभी कभी इस बात को पसंद नहीं करता कि बंदा मोमिन खुदा की राह में सदका दे। फौरन जहां आपने जरा सा कुछ सोचा फौरन आपको किसी और पर लगा दे। बाहर हम अपने असल मौजू की तरफ पलटते हैं। विलायत के हवाले से हमने काफी बातें कर ली। विलायत जैसे मैंने पिछली दफा आपसे किया था सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस देता और गुजर जाऊं कि खुदा की विलायत क्या है कि अल्लाह हर इंसान से करीब है और बे इंतहा करीब है लेकिन हर इंसान खुदा से करीब नहीं बल्कि इंसान को खुदा से करीब होना पड़ता है ईमान और अमल सालेह के जरिए से। ठीक है। और जब इंसान ईमान और अमल सालेह को अपनाने के बाद कुर्बत खुदावंदी को हासिल कर लेता है तो उसे तीन चीजें हासिल हो जाती हैं। पहली चीज नुसरत खुदा, दूसरी चीज मोहब्बत खुदा, तीसरी चीज अल्लाह की मुसलसल हिमायत और सरपरस्ती जिसका नतीजा होता है अल्लाह की सरपरस्ती का अमली नतीजा क्या निकलता है कि बंदे मोमिन हमेशा तारीखियां उसकी जिंदगी में कम होती रहती हैं नूरानियत बढ़ती रहती है। ये इसी चीज को कुरान करीम की आयतों ने खुद अंबिया की जबान से बयान फरमाया कि तावरेकरम ने फरमाया कि इन्ना वली अल्लाह बेशक मेरा वली अल्लाह नज़रत किताब जिसने वो अल्लाह कौन है तो जिसने किताब नाजिल की वहुवा यतवल्ला फालिहीन और एक जनरल स्टेटमेंट आते हैं। इसलिए देखें एक बात अपनी जगह मुसल्लम है कि दीन और दीन के फवायद पूरी इंसानियत के लिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी के जहन में ये बात हो कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अंबिया के लिए थी आयमा के लिए थी तो सरीहन आयात खुदाबंदी की तरफ थी। और इसी वजह से कुरान करीम ने जहां अंबिया के फजाइल का जिक्र किया है वहां पर जब तर्जुमा किया है उस स्टेटमेंट को तो एंड में एक जनरल एक आम उमूमी जुमला बयान किया है ताकि तमाम इंसानों पर उसका इतला समझ में आए। पैगंबर ने फरमाया वली अल्लाह अगर बात समझ जाती नहीं पर आयत खत्म हो जाती तो हम समझते हैं कि ये विलायत पैगंबर और खुदा का कोई जाती रिश्ता है। लेकिन आपने अगला जुमला पैगंबर के कौल का यह है कि वो वली क्यों है तो उसने किताब नाजिल की और वो सिर्फ मेरा वली नहीं है बल्कि हर वो इंसान जो अपने अंदर सिफत सालेहियत पैदा कर ले हर उस इंसान का खुदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से कुरान करीम नकल करता है उस मकाम पर कि जब चले ये भी था तो आखिरी जुमला था तकरीबन पूरा वाक्य बयान करने के बाद हाँ दुआइया जुमले हैं अल्लाहुम्मा यफातिर समावाति वल अर्ज انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم میرے خدا یا فاطر السماوات والارض وہ کون ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا خالق ہے انت ولي تو میرا ولی ہے فی الدنیا والآخرة نہ صرف دنیا کی زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں۔ یعنی انسان خدا کی سرپرستی سے انسان خدا کی حمایت سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف اس دنیا میں نہیں ضرورت ہے بلکہ آخرت میں بھی خدا کی حمایت سرپرستی کی ضرورت ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما جب میں اس دنیا سے انتقال کروں تو مسلم بنا کر مجھے مرحلہ انتقال تک پہنچانا الحقنی بالصالحین اور صالحین کے ساتھ مجھے منعقد کر دینا میرا حاضر۔ اور यही कुछ चीज के जैसे प्रारंभ कर कि ये दुआ है और एक मकाम हुआ है कुरान करीम में कि जहां खुद खुदा ने कहा कि हाँ हम इस शख्सियत के वली हैं। और ये कौन सा मकाम है? सूरह तहरीम की आयत नंबर 4। मतलब सूरह तहरीम की इब्तदा आपको पता है कि जिसमें कुछ दो अजवाज के हवाले से जिक्र है। आयत नंबर 4 ये कहती है इन ततूबा इलल्लाह फकद फवत कुलूबुकुम, उन्हीं दोनों अजवाज को मुखातिब करके अगर तुम तौबा करो खुदा की तरफ क्योंकि बेशक तुम्हारे दिल कर्ज हो चुके हैं टेढ़े हो गए हैं। वाइन तज़ाहरा अलैहि और अगर तुम इस तौबा से खुददारी करो फइन्नल्लाहा हुवा मौलाहु, बस बेशक अल्लाह इसका मौला है। यानी एक चीज के हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू मेरा वली और सरपरस्त हो जाए, और इससे बड़ा चीज के खुदा खुद कहे कि मैं इस बंदे का मौला हूं, ये इंतहाई बाफजूल मौला। तो खुदा क्या कह रहे हैं कि अगर तुम यानी या किसी और मकाम पर भी कि अगर कुफार और मुशरिकीन खिलाफ है, अगर पैगंबर के मुकाबले पर सब लोगों ने महा कायम कर लिया है, पैगंबर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। पर्यावरण मौला पर्यावरण नसीब कि अल्लाह बेहतरीन मौला है और बेहतरीन मसरत करने वाला है। तो इस हस्ती का इस पैगंबर का मौला कौन है? खुदा है, अल्लाह है। तो ये वो चीज है कि जिसकी हमें हमेशा ख्वाहिश कर रहे हैं इन तीन टुकड़ों के आयतों के बयान करने का मकसद यह था कि हम अपनी जिंदगी में मुसलसल क्या मानते रहें कि हम अल्लाह के वली हो जाएं। अल्लाह के वली होने का मतलब क्या है कि पहले मरहले पर खुदा की नुसरत मोहब्बत और सरपरस्ती को हासिल करें, और इससे आगे बढ़कर वो मकामात इंसान को हासिल हों कि इंसान आसमाने इलाहिया का जलवा बन जाए। यानी जो आइमा और अम्बिया थे वो सिर्फ इस दर्जे के वली नहीं थे, उनका दर्जा वलायत सिर्फ इतना नहीं था कि उन्हें खुदा की नुसरत हिमायत और मोहब्बत हासिल थी, बल्कि वो इस दर्जे बाला पर थे कि वो आसमाए इलाहिया सिफात खुदाबंदी का मजार जलवा है। वलायत शुरू यहाँ से होती है, वलायत है खुदाबंदी, और उसकी इंतहा यह है, बल्कि इंतहा नहीं कहना चाहिए कि इंसान जब आसमाए इलाहिया का जलवा बनता है तो अब उसके बाद इस्म की कितनी शिद्दत इंसान के नफ्स में जाहिर होती है इसकी कोई इंतहा नहीं। यानी इस्म रुबूबियत का जलवा हर इंसान मिसाल के तौर पर, लेकिन अब इस्म रुबूबियत की शिद्दत कितनी ज्यादा है मिसाल के तौर पर। हर इंसान किस एतबार से रुबूबियत का जलवा है कि हर इंसान बहसीयत है वालिद या वालिद मुरब्बी है अपनी औलाद, लेकिन पैगंबर अकरम किस तरीके से इस्म रुबूबियत का जलवा है कि पूरी इंसानियत के मुरब्बी। तो पैगंबर के अंदर जो सिफत रुबूबियत जिस अंदाज से जरूर कर रही है वो मेरे आपके अंदर भी है, तो उस नूर की उस इस्म की शिद्दत और उसका लेवल कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो ये वो मकामात विलायत हैं कि जहां तक पहुंचने की हमें आश कर। फिर मैंने आपसे कहा था कि अब हम बात करेंगे एक एतबार से विलायत इज्तिमाई के हवाले से, क्योंकि विलायत का दूसरा पहलू इंसानी माशरों का इसका इतबार होता है, और वो किस एतबार से कि इंसानों के दरमियान बाहमी कुर्बत जो नजरियाती और दीनी बुनियादों पर कायम होती है वो रिश्ता विलायत को जनरेट करती है, और इंसानी और इस्लामी माशरे में जाहिर है कोई माशरा भी एक हुकूमत से और एक हाकिम से बेनियाज नहीं होता। उस हाकिम के साथ माशरे का रिश्ता वो एक दूसरे सिलसिला विलायत को क्रिएट करता है। फसाना यानी कि ये जो सरपरस्ती का अंसर है, बाहमी भाईचारे और अखूबत का अंसर है, ये एक माशरे के अंदर मौजूद रहता है, अफराद का अफराद के दरमियान और अफराद का हाकिम माशरा के साथ, अफराद माशरा का हाकिम माशरा के साथ जो रिश्ता है विलायती रिश्ता अगर बन सकता है तो वो उसी एतबार से है कि जिस एतबार से खुदा या पैगंबर सरपरस्त हैं। इस्लामी माशरा जो है, इस्लामी विलायत को यही कहती है कि जो भी इस्लामी माशरे का हाकिम होगा उसके साथ माशरे का रिश्ता विलायत उसी लाइन पर होना चाहिए, उसी जहत पर होना चाहिए कि जिस एतबार से अफराद माशरा का रिश्ता पैगंबर या इमाम के साथ होगा। उस पर मैं तफसील से बात करता हूँ। पहले वो मैं आपके सूरह मायदा की कुछ आयतें आपके सामने तिलावत कर दूँ कि जिनमें वाज़ह तौर से मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि किस किस्म के अफराद से गुरबत पैदा करो, कौन तुम्हारे सरपरस्त हो सकते हैं, किन्हें अपना सरपरस्त बनाओ और किन से दूरी कर सकते हैं, यानी एक जामे बयान है। और ये जामे बयान कहाँ आपको मिलेगा? सूरह मायदा की आयत 51 से लेकर 57 तक, 7 आयत। या अय्युह الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء। पहली नसीहत, ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना वली और सरपरस्त ना बनाओ, यानी ना उनसे रिश्ते उखुव्वत कायम करने की कोशिश करो और ना उनके जेर सरपरस्ती जाने की ख्वाहिश और कोशिश करो। क्योंकि यहूद और नसारा बिल्कुल नाम लेकर जिसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहती कि यहूद और नसारा को ना अपना सरपरस्त बनाओ ना अपना भाई समझो, रिश्ता है उखुव्वत के काबिल समझो। बाअज़ुहुम औलिया व बाअज़, इनमें से एक दूसरे के औलिया, इनमें आपस में रिश्ता है विलायत का है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और जो इनसे तवल्ला रखेगा वो उन्हीं में से समझा जाएगा। क्योंकि इंसान हकीकतन उसी कबीले से ताल्लुक रखता है जिस कबीले के अफराद से मोहब्बत करता है या जिस कबीले के अफराद से रिश्ते मिलाया करता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपके खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि हम जो तवल्ला और तवर्रा जिसको खुलूए दीन में शामिल समझते हैं, तो अब इसको समझ लीजिए कि तवल्ला का मतलब क्या है कि आपका रिश्ते विलायत किससे कायम है, तवल्ला का मतलब यह है। और तवर्रा का मतलब यह है कि आपने किससे दूरी इख्तियार की है, किससे विलायत की रिश्ते को कायम नहीं किया, यह तवल्ला तवर्रा है। तवल्ला तवर्रा का मकसद किसी की तारीफ करना है, किसी की बुराई करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है किससे रिश्ते विलायत जोड़ा और किससे अपने आप को जुदा कर दिया। जो इनसे तवल्ला रखेगा वो उन्हीं में से करार दिया जाएगा। और यहूद और नसारा के लिए एक खास बात क्या है कि खुदा कहीं इनको काफिर और कुछ एतबार से मुशरिक भी कहा गया, लेकिन हकीकतन ये लोग कौन है? हकीकतन जालिम है। किस एतबार से जालिम है कि खुदा की निशानियां, खुदा की आयतें, खुदा की किताब इनके पास मौजूद है और उसके बावजूद ये इन्हराफी और इन्हराफी तत्व त्याग करते हैं। तो हकीकतन जो इनकी सिफत है, जो बल्कियन सिफत है, वो जुल्म है। इस एतबार से हमें भी होशियार होना है कि खुदा की किताब हमारे हाथ में है, खुदा की जानिब से हिदायत हमारे पास भी है। क्या हम अपनी जिंदगी में इस बात के लिए कमिटेड हैं कि हम खुदा की किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करें या किसी दूसरे पथ पर चलना शुरू करें? तो फिर हम भी उन्हीं जालिमीन के साथ शामिल हो जाएं।
लेकिन एक सवाल है
जी,
ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी सरपरस्ती नहीं करे तो जो इतनी इंटरनेशनल कंपनी है उनके अंदर जो मुलाजिम हैं उन्हीं की सरपरस्ती के तहत चलते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें?
नहीं देखिए, बात सारी की सारी बात यहाँ पर बहुत वाजह है, वो ये कि जो कुछ कुरान करीम में बयान हुआ दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, वो एक सच्चाई का मसला है। ठीक, अब हम उसमें किस हद तक उस पर चलने में कामयाब होते हैं? अगर 100% चलेंगे, 100% नतीजा हासिल कर लेंगे, 10% चलेंगे, 10% नतीजे हासिल करेंगे, 90% नुकसान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी किसी मजबूरी की वजह से उसूल कुरानी से इन्हराफ कर रहे हैं उसका हमें कोई फायदा हो जाएगा। अगर इंसान मुस्तर है दुनिया को बताती, अगर मुस्तर है हालत इज्तिराब में ये काम कर रहा है, तो कोई उसके पास चॉइस नहीं। अगर ऐसा नहीं करेगा मर जाएगा, अगर ऐसा नहीं करेगा पापों की जरूरत, तो उस पर मुस्तर की कैफियत का इतलाफ होता है, हो सकता है खुदा उसे माफ कर दे। लेकिन लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा ने जो ये बात कही कि यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त ना बनाओ, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, तो महसूस कर सकते हैं कि खुदा एक मुस्तहकम मोहकम इस्लामी माशरे को परवान चढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
अगर कोई बहादुर से मजबूरी कर भी रहा है तो उसको वो नस्बत का लेवल मिल सकता है।
नहीं नहीं, आप देखिए, आप खुद इस बात को तजुर्बा करके देखें, मैंने तो थोड़ा तजुर्बा किया है कि वो अफराद के जो यहूद और नसारा के जेर साया उनके माशरों में जिंदगी गुजारते हैं, अब तो एक अच्छी बात ये हो गई है कि वहाँ भी मुसलमानों ने काफी अपने लिए जगह बना ली। लेकिन अगर आप उनके जेर सरपरस्ती काम करते हैं, उनके उसूलों के तहत, तो दीन इंसान से अक्सर हो जाता है, सिर्फ बड़ा नाम रह जाता है। इसका मैंने बिल्कुल तजुर्बा करके देखा। और एक चीज आप तमाम हजरात, क्योंकि उन माशरों से रबता रखते हैं, बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, कि हम इंतहाई बुरे हाल में हैं पाकिस्तान, यानी कि हमारे पास दीन का नाम है ज्यादातर, कोई खास चीजें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितना हम मुतवज्जे हैं और मिसाल के तौर पर जितनी अच्छी हालत में हम नमाज पढ़ लेते हैं, वो हजरत नहीं पढ़ सकते। मैंने चीजें देखी है कि उन लोगों के लिए यही कर लेना कि हमने नमाज पढ़ ली 5 वक्त की, रमजान के रोजे रख लिए, या दिन में थोड़ी सा कुरान की तिलावत कर ली, उसको वो बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं उस माशरे का। तो ये मसले हैं कि जो बात कही जा रही है ना कि उससे अपने को अलग करो, ये उसूल हकमी है कि अगर तुम उनके जेर सरपरस्ती चले जाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान का दीन तरक्की करने के बजाय रुक जाता है, फिर कमजोरी हो जाता है।
तो आप ये कहते हैं कि ये जो जितने मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, कंपनी है, तो हम कोशिश करें इसमें नौकरी ना।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मतलब कुरान कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम सब मिलकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये नुकसान कर रहे हैं, हम सब मिलकर जितना कुछ हमारे पास है अपने माशरे को बेहतर से बेहतर करें, ताकि हम खुद इस्लाम के दीन के फवायद से बहरामंद हो सकें, और हमारे वो भाई कि जो उस मुश्किल में मुब्तला है उनको भी खुदा के तारा पहुंचे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात नहीं कहना चाह रहा, जाहिर है कि जो मजबूरी और इस्तरार है उसको क्या करेंगे, ठीक है। हम इस उन्मान से बात कर रहे हैं कि हम अपनी हालत को इस कदर बेहतर बना लें कि हम खुद मिसाल बन जाए लोगों के लिए, कि हम खुद इतनी अच्छी हालत में, जैसे देखें लोग यूरोप की तरफ क्यों जाते हैं, उनकी जाहिरी कैफियत को देखते जाते हैं कि खुशहाल है। तो अगर मुसलमान मिसाल के तौर पर दीन के साथ खुशहाल होंगे तो लोग क्यों नहीं आएंगे। सर فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره تم دیکھو گے پس ان قریب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے یسارعون فیہم وہ دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں یہود اور نصاریٰ کے پاس ان کی سرپرستی کو اختیار کرتے ہیں یقولون اور کہتے ہیں نخشہ ہمیں اشیریت ہے ہمیں ڈر ہے ہم کو فری بنا دامرا کہ کہیں بدبختی ہمیں نہ ہمارے اوپر نہ ہے دیکھیں وہی بات جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہی ہمیں اچھا ہے کہ اگر ہم ان کی انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ہمارے ذہنوں پر یہ خوف حاوی ہے کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے جو زندگی انہوں نے بنا کے ہمیں دی اگر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو ہم بدبختی کا شکار ہو جائیں گے اس وقت قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایسے افراد کون ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے کہ جو اس چیز پر یقین نہیں رکھتے کہ جو خدا نے انہیں دی جو اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ جو دین خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے تمام مسائل جو ہے دنیا کی بھی اچھی زندگی ہے آخرت کی بھی اچھی زندگی ہے. لیکن بہرحال یہ جملے میں کہہ رہا ہوں لیکن میں پھر اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی اپلیکیشن بہت مشکل ہے. آج ہم جس ایک جگہ پر پہنچ چکے ہیں وہاں پر اس کی اپلیکیشن بہت مشکل ہے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. پس ان قریب ایسا ہو کہ خدا اپنے امر کو کھول دے, واضح کر دے کہ یہ افراد اپنی زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پاس کیوں جاتے ہیں, ان سے قریب کیوں ہوتے ہیں, تاکہ بدبختی اور زمانے کی خرابی ہم کا پکڑ لے. لیکن خدا کہہ رہا ہے علما اسروا فی انفسہم, جو انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپا کے رکھا ہے وہ کچھ اور ہے. یہ افراد کے جن کے دلوں میں مرض ہے انہوں نے ایک زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن حقیقت ہے کہ اتنے بھی نہیں ہیں, بلکہ اپنے دلوں میں انہوں نے کچھ اور چھپا کے رکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انقریب خدا کوئی ایسی چیز کھول کے لے آئے اپنے امر کو کہ یہ لوگ ان باتوں پر جو اپنے نفسوں میں چھپا کر بیٹھے ہیں نادم ہو جائیں. اور مجھے زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج کے دور میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کم از کم لوگوں کے سامنے دین کی ایک شکل موجود ہے کہ جس کو آپ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ دین ہماری ہے, یعنی صرف اور صرف تھیوریٹیکل نہیں بلکہ پریکٹیکل ریلیجن آپ کے سامنے موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. ہم دیکھیں یہ بہت خطرناک, یہ لفظ بہت خطرناک. یہاں پر بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ افراد جو اس بات پر اصرار کر رہے ہیں مصر ہیں کہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے, مصر ہیں کہ ہمیں ان کی سرپرستی کو حاصل کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم خرابی سے گزار رہے ہیں, ایسا نہیں کریں گے تو یہ مصلحتوں کے خلاف ہوگا. اب خدا کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والوں, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو اپنے دین سے پلٹ جائے گا, یعنی کہ دین پر قائم رہنے کا تقاضا کیا ہے, دیندار ہونے کا تقاضا کیا ہے, کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے سے زندگی کو ڈیولپ کریں, نہ کہ اس کو بلا دیں. اور وہ افراد کے جو خدا سے انحرافی رستوں پر لے کے چل رہے ہیں ان کی سرپرستی میں لے کے بیٹھے ہیں کہ زندگی تو وہی ہے جو گزار ہے, زندگی تو وہی ہے جو انہوں نے دی. ایسے لوگوں کو خدا کیا کہہ رہا ہے, ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے, اے ایمان والو, اور بریکٹ میں شاید یہ ہے کہ تم میں سے جو ایسا کرے گا اور مصر رہے گا ایسا کرنے کا, من یرتد منکم عن دینہ, جو اپنے دین سے ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا, رد ریفلیکٹ ہو جانا, یعنی ایک چیز جس رستے سے آئی تھی فارورڈ اسی پر ریورس ہو جائے, اسے کہتے ہیں ارتداد, رد ہونا, مرتد ہونا. مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس رستے سے چل کر آئے تھے ایمان کی طرف اسی رستے پر پلٹ کے واپس کفر کی طرف چلے گئے, یہ مرتد ہے. من یرتد منکم عن دینہ, جو اپنے دین سے پلٹ جائے گا, فسوف پس ان قریب یأتی اللہ بقوم, اللہ کے قوم کو لے آئے گا. یعنی تمہیں سورت میں بھی شکار نہیں کرنا کہ تم اگر مسلمان ہو گئے ہو, تم مومن ہو گئے ہو, تو خدا کو تمہاری کوئی ضرورت حاجت مجبوری رات ہو گئی کہ تمہارے بغیر دین چلے گا نہیں آگے. اگر تم ان چیزوں پر مصر رہے, اگر تم نے قرآن کو, اگر تم نے اس ہدایت کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو قائم نہ کیا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یا پھر اللہ کے قوم نے اللہ کے قوم کو لے آئے گا, کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوں. خدا کیا رشتہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے, محبت کا رشتہ چاہتا ہے, کہ میرے بندے یعنی کہ اٹھا بیٹھا ورزش खुदा ने ये दीन किस लिए दिया है जो अभी हम बात कर रहे हैं, ताकि बंदों के साथ रिश्ते विलायत कायम हो, और विलायत बगैर मोहब्बत के मुमकिन नहीं है। युहिब्बुहुम कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, वो युहिब्बुना और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करते होंगे। यहाँ पर भी देखें तरतीब जो है वो वही आ रही है कि पहल बंदे को करना है, तो युहिब्बुहुम यानी कौम की अल्लाह से मोहब्बत पहले है और अल्लाह की कौम से मोहब्बत उसके बाद है, उसके नतीजे में पहल हमें करना है। हम अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि खुदा कुछ देगा खुदा कुछ देगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये शुरू हमें करना है, इब्तिदा बंदे की तरफ से होना है। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, उनकी सिफत क्या होगी कि मोमिनीन के सामने झुके हुए और आजिज, अज़िल्लतिन अलल काफिरीन काफिरों के सामने सरबलंद और बाइज्जत, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, वला यखाफूना लौमत लाहिम और अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह का लफ्ज़ मैं लगा रहा हूँ आयत में, वला यखाफूना लौमत लाहिम किसी मलामत करने वाले की मलामत से जरा बराबर फौजदा ना होगा। खुदा ऐसी कौन को ले, और मुझे याद है कि अहमद दीदार जो एक साउथ अफ्रीका का काफ़ी मशहूर है सुनना का मुफक्कर, उसने एक बात ये कही थी, ये आयत पढ़ी थी और इस आयत के पढ़ने के बाद उसने कहा था कि खुदा ने पहले दीन जो था उसकी जिम्मेदारी अहले सुन्नत को दी और 1,000 साल 1,200 साल का खुदा इंतजार करता रहा, लेकिन जब उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो खुदा एक ऐसी कौम को ले आया है जिसमें ये सारी सिफात पाई जाती है जो उसके अल्फाज हैं। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, मोमिनीन के सामने झुके हुए, कुफार और मुशरिकीन के सामने सरबलंद, खुदा की राह में जिहाद करने वाले और अल्लाह की राह में किसी मरामत करने वाले की मरामत से मौजदा ना होने वाले। तो खुदा ने क्या कहा कि इस खुशफहमी का शिकार नहीं करना कि तुमने कहा कलमा तैयबा पढ़ लिया, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया, अपने आप को मोमिन कह दिया, नमाजें पढ़ ली, तो गोया खुदा को तुम्हारी कोई हाजत ना हो। तुम्हें उन तकाजों को पूरा करना है कि जो दीन की राह से तुम पर आए होते हैं, आवाज होते हैं, और उन तकाजों में से अव्वलीन तकाजा क्या है कि दीन की बुनियाद पर एक कामयाब जिंदगी का इंफरादी तौर से डेवलप करना और एक अहसन माशरे को इज्तमाही तौर से
डेवलप करना। अभी आप फरमा रहे हैं यहूदी और नसारा के मुकाबले में और एक इस्लामी माशरे की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये मुश्किल नहीं है कि यहूदी और नसारा तो कामयाब हो गए हैं एक दुनियावी निज़ाम कायम करने में काफ़ी हद तक कामयाब, और उसके बरक्स मुसलमान कोई एक वाज़े ऐसा मॉडल नहीं तैयार कर सके 1400 साल में कि जिसको कि कामयाब खुशहाल मॉडल कहा जाए।
नहीं, इसको यूँ शायद ना कह सकें बल्कि इसको आप 200 में बांट लीजिए, तकरीबन 500 यानी अगर आप 20वीं सदी से बात करें तो पैगंबर अकरम की बेसत है 610 ईसवी और उससे तकरीबन 700 साल तक मुसलमानों ने दुनिया के सामने बहुत पेश किया, मैंने हुकूमतें भी कामयाबी से की और इल्मी और बहुत सारे जगहों से मुसलमानों ने कामयाब माशरों की तश्कील भी की और उसके रोल मॉडल्स भी दुनिया के सामने रखे, और ये बात भी खुद अहले मगरिब इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्हीं मॉडल्स की बेस पर ही वो आगे लेके चले, यानी कि उस जमाने में उनके अपने माशरे इंतहाई पस्ती रह जाता था। अगर आप इनका ह्यूमन चार्ट्स देखें इसके और इस किस्म के चार्ट्स देखें इसमें जो अंग्रेज माशरे के ऊपर काफ़ी लिखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि इवन 18वीं 19वीं सदी तक बहुत बुरा हाल था वहाँ। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान कभी एक कामयाब माशरे की तस्वीर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ऐसा नहीं। पिछले 600 साल से पिछले 500-600 साल से हमारी हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई, इसमें शक नहीं। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों ने, अब यहां पर एक बात है कि मुसलमान जब उरूज पर थे तो उन्होंने यहूद और नसारा को हमेशा सपोर्ट दिया, कि जब मेरा ख्याल है कि रूस से या कहां से यहूदियों को ईसाइयों ने यरूशलेम से शायद बहुत बुरी तरह मार के निकाला था, तो तुर्की ने मुसलमानों ने उनको पढ़ा दिया, और इसी वजह से आपको तुर्की के अंदर यहूदियों की इबादतगाहें भी बहुत नजर आई। लेकिन जैसे ही यहूद और नसारा को उरूज हासिल हुआ, इनकी सबसे पहली और मुसलसल कोशिश ये थी कि मुसलमानों को जितना खराब कर सकते हैं। मुसलमानों ने यह एफर्ट नहीं की, मुसलमान इस लिहाज से यूनिक कौम है कि वो आपस में तो एक दूसरे को उन्होंने काटा काटा मारा, लेकिन दूसरी कौम के साथ ही काम नहीं किया, उनको सपोर्ट ही दी। ठीक है, तो इस एतबार से ये बात शायद दुरुस्त ना हो कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो किसी एक कामयाब माशरे की तश्कील नहीं कर पाए। ये बात अलबत्ता इस वक्त दुरुस्त है, लेकिन जो आयत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की और मैंने एक हवाला भी दिया एक अहले सुन्नत के स्कॉलर का, कि ये चीज भी खुदा का एक निज़ाम है कि अगर मुसलमान, क्योंकि ये आखिरी निज़ाम है जिसकी कामयाबी के लिए खुदा ने वादा किया है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीन हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ये खुदा का वादा है कि इस आखिरी पैगंबर के जरिए से हमने जो दीन नाज़िल किया इसे बाकी तमाम अदियान पर ग़ालिब होना है। अब इसके बाद कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि अगर तौरात के मानने वाले तौरात को खराब कर दें तो बाद में कोई और आएगा, अब ऐसा नहीं। तो इस वजह से ये भी एक सुन्नत खुदाबंदी है कि अगर मुसलमान जी मैं बात कि इस लिहाज से ये भी सुन्नत खुदाबंदी है कि अगर अहले ईमान अपने रास्ते से पलट जाए तो खुदा किसी न किसी ऐसी कौम को लाता रहेगा कि जिसके जरिए से दीन को सवाब और बफा और दवाम हासिल होता रहे और दीन आगे बढ़ता है। जी हाँ,
पहले जमाने में
मैं जो बात कहूंगा, हो सकता है कि मैं ये ना कहूँ, मैं हो सकता है ये ना कहूँ कि ईरान का माशरा मॉडल है, बल्कि मैं ये बात ज्यादा फोर्सफुली कहूंगा कि इंकलाब ईरान एक बहुत अच्छा मॉडल है। इन दो चीजों में फर्क समझ गए। इंकलाब ईरान का मतलब यह है कि उस माशरे के एक तबके की कोशिश और जद्दोजहद उलमा के जरिए आए, जिसमें उन्होंने शैतानी और तावती जिंदगी से इलाही जिंदगी की तरफ हिजरत की। ये बहुत जबरदस्त मॉडल है जिसको दुनिया में किसी भी जगह पर अपने इन इन इस तब्दीली के साथ कि उस जगह की क्या रवाज है, उस माहौल की क्या रवाज है, उसे अप्लाई किया जा सकता है। इन्हें उसूल जो वहां से नजर आते हैं वो बहुत अच्छे हैं।
माशी और समाजी तौर पर भी
देखिए, माशी और समाजी एतबार से जब बात आती है तो होता यह है कि खुद पैगंबर के दौर में और तमाम इंडिया के दौर में यह होता रहा कि अवाम जो है उनकी अक्सरियत इन चीजों को सही से समझ नहीं पाती और ज्यादातर लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्स की इत्तबा की तरफ मार लेते हैं, उनकी वजह से आपको माशरे में खराबी नजर आने लगती है, कि जिसकी वजह से आप ये बात कहना शुरू हो जाते हैं कि जनाब वो जो कोशिश की वो गलत थी या खराब थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चीज असल में बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल इलाही है, लेकिन अवाम की वजह से, जैसे आप देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अवसर में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने जो मौजज़ात रखे शायद किसी कौम ने वो सब कुछ नहीं देखा था। बैजा असा कशदहा बनना, दरियाए नील का हट जाना, खुद उसमें से गुजर के जाना, इतना सब कुछ देखने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम से ये कहते गए कि मैं 40 दिन के लिए जा रहा हूं, उस दौरान में क्या कुछ नहीं हो गया, बछड़ा बना लिया, पूजना शुरू हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये जो तबका है ना, ये मसला है और ये शुरू से लेकर अब तक मसला है जिसकी वजह से काम खराब होता है। तो जो कुछ उलमा ने काम किया वो बेहतरीन है, और उसमें क्योंकि वो सारी की सारी चीजें कुरान और सीरत मासूमीन पर बेस करती है, उससे हम اصول اخذ کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں ہمیشہ.
اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ جب ہم جب ایران کی بات کر رہے ہیں اور ایک اسلامی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بہت آئیڈیل اسلامی معاشرہ شاید نہ بن چکا ہو، لیکن وہ ایک صحیح سلک کی طرف گامزن ہے اور اس میں کوشش ہو رہی ہے. تو ہم اس کو اس طریقے سے انقلاب کو اور معاشرے کو الگ کر کے تو اس کو دیکھنا شاید مناسب نہ ہو.
نہیں، اس میں دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام نے 23 سال کی زندگی گزارا، اس 23 سال کی زندگی میں آپ نے ایک کتاب دی، دستور العمل دیا، ایک معاشرے کو قائم کر دیا، یعنی جو کچھ آپ نے خدا کی طرف سے حاصل کیا اس کو مدون کر دیا افراد کے لیے، ایک جگہ ایسی بنائی آپ نے کہ جہاں پر آپ نے اس کو نافذ اور امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا، اور خود اس کے جتنے اس کے تقاضے پورے کر سکتے تھے سب دکھا دیے 23 سال کے اندر یہ کام آپ نے کیا. لیکن اس کے بعد جب پیغمبر اکرم تشریف لے گئے اس دنیا سے، اسی چیز میں فساد کرانا شروع ہوا، خراب ہونا شروع ہوئی. اور ظاہر ہے کہ آج ہم سب وہیں سے چلے ہیں کہ اگر ہم پیچھے جانا شروع ہوں تو ہم سب کی جڑیں، جتنے بھی مسلمان سب کی جڑیں وہیں پر جڑیں جڑ جائیں گی. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی وجہ سے کہ جو اس پیغام کو لے کے چلتے ہیں خرابی ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اگر آپ اس کی طرف جڑے رہیں، اس کی طرف آپ رجوع کریں، تو وہاں پر آپ کو اپنی اصلاح کے لیے مواد ہمیشہ ملتا ہے.
بات مل رہی معذرت
نہیں بات ہو رہی
میں جو ابھی ہم ہمارا موضوع بحث تھا کہ یہودی نصارہ کا معاشرہ اور اس کے بدل ایک مخالف ایک اسلامی معاشرہ،
یہ بات میں بزرگوار نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ایران ایک ماڈل اسلامی معاشرہ ہے. اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ
میرا یہ کہنا تھا کہ ایران کا معاشرہ آج سماجی معاشی مذہبی طور پر ایک ماڈل ہے، اور یہودیوں کے مقابلے پر کسی لحاظ سے ترقی یافتہ یا کسی لحاظ سے کم نہیں ہے. ایران نے ایک ماڈل پیش کیا ہے اس زمانے میں اور وہ یہودی اور نصارا کے مقابلے پہ ہٹ گیا.
اچھا میری گزارش ہے اسی سے بات جڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کو آئیڈیل ماڈل نہ بھی اگر مانیں تو ایک متبادل ماڈل کے طور پر، کیونکہ آئیڈیل تو نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز اس میں وہ ہو گئی، لیکن کم سے کم ایک چونکہ ایک خلا تھا کہ اس کے متبادل کے طور پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، اب ایک واضح طور پہ ایک اچھا متبادل موجود ہے اور اس کو ہم ماڈل نہ کہہ سکیں کیونکہ ماڈل کا ہم ہٹا دیں، لیکن ایک متبادل اچھا اسلامی متبادل تو ہے.
جی میں اس میں اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا، میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہی تو میں نے جملہ کہا کہ اس معاشرے کو اگر آپ دیکھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم ابھی ایسے افراد ہیں کہ جو ایک مطالعاتی دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم میں سے کسی نے کہا فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ ماڈل ہے، ہم وہاں پر چلے گئے اور اتفاق سے ہماری ملاقات ایسے افراد سے ہو گئی کہ جو ایسے ادھر ادھر کے، اور ہم وہاں سے یہ تصور اور تاثر لے کر آئے کہ وہ تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماڈل ہے اور وہاں تو ہم یہ سب کیوں ہے، یہ کس قسم کا ماڈل ہے. تو اس وجہ سے اس پہلو کو سیو کرتے ہوئے میں نے بات کہی تھی کہ اگر آپ ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو انقلاب نہیں دیکھیں، معاشرے میں بعد میں دیکھیں، انقلاب میں ماڈل تلاش کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے کہ اگر آپ کو اسلام کا ماڈل دیکھنا ہے تو پیغمبر اکرم کی 23 سالہ زندگی میں دیکھیں، نہ کہ بعد کے معاشروں میں کہ جو مختلف خلافہ نے قائم کیا، جیسے کہ وہ بھی نام لینے کے لیے اسلامی معاشرے ہی تھے. یہ مطلب تھا میرے کہنے کہ اگر یہ نہیں ہوتا نا تو اس وجہ سے بہت سارے کو پٹا جاتا ہے کہ روٹ وہاں پر ہے، وہاں سے ایک چیز آگے چلے. تو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ خداوند کریم کی یہ سنت ہے، کیونکہ اس ہستی پیغمبر آخر الزمان کے بعد کسی دوسری ہستی کو نہیں آنا، تو اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب ہونا ہے، اور وہ افراد چاہے وہ ہم ہوں یا کوئی اور کہ ہم آگے بڑھیں. ہم نے کہا کہ ہم نے قبول کیا ہے دین پیغمبر کو، لیکن ہم